श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निर्वद्यत्वात् नैव गुर्वनुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषाम् बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा कोपावेश चलद्गात्र पुत्रं हन्तुं मनो दधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम् अहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम् सर्पः पदाहतैव श्वसन् प्रकृतिदारुणः। हिरण्यकशिपुर्वाच हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मच्छासनोद्वृत्तम् नेष्ये त्वाद्यजमक्षयम् क्रुद्धस्य जस्य कम्पन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्य मे भीतवन् मूढः शासनं किं बलोत्यगः। श्री प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः स ईश्वरः कालगुरुक्रमोऽसौ ओजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्वत्यतिगुणत्रये सह दज्जहि आसुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्वन् सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मनोत्पथ स्थितात् तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्।
जगृहुर्निरवद्यत्वात् नैव गुर्वनुशिक्षितम्। अथाचार्यसुतास्तेषाम् बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयदि यथा।
श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जग्रहो निरवद्यत्वात् नैव गुर्वनुशिक्षितम्।
बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञया वेदयदि यथा।
पुत्रं हन्तुं मनो दधे सिप्त्वा परस्परुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम्।
तिरस्तीनेन चक्षुषा प्रशयावानं तं दान्तम् बद्धाजलिमवस्थितम् सर्पापादहत इव श्वसन प्रकृतिदारुणः।
श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहो निरवद्यत्वा नैव गुर्वनुशिक्षितम्।
अथ आचार्यसुतस्तेषाम् बुद्धिम् एकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वविरितो राज्ञ आवेदयत यथा।
श्रीप्रह्लाद वाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां परेवरेमि स्थिरराजमाये ब्रह्मादयो चेन वशं प्रणीतः।
माताजी
स एव विश्वं परमा स्वशक्तिभिः सृजति अवत्याति गुणत्रये स
सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहु निर्वध्ये तत्त्वा ನೇವ ಗುರು ಅನುಶಿಕ್ಷಿತ.
ತೀನ ಶ್ಲೋಕ ಪಡೆಯೇ ಭವತ್.
श्री नारद उवाच. श्री नारद मुनि ने कहा, अथ तत्पश्चात दैत्य सुता असुरों के पुत्र प्रहलाद महाराज के सहपाठी सर्वे सभी श्रुत्वा सुनकर तत् उससे प्रहलाद से अनुवर्णितम भक्तिमय जीवन के विषय में कथन जगृहु स्वीकार किया निर्वद्यत्वान उस उपदेश के श्रेष्ठ उपयोग के कारण न नहीं एव निसंदेह गुरु अनुशिक्षितम जो उनके गुरुओं ने पढ़ाया था. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा. अनुवाद. नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया. उन्होंने संड तथा अमरक नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया. तात्पर्य, यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है. यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है. जैसा कि श्रीमद्भागवतम 3:25 में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हितकर्ण रसायना कथा. यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो ये उपदेश अत्यंत कर्ण प्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे. इस तरह यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है. प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए. उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं संड तथा अमर की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीत राजनीत आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की शिक्षा दे रहे थे. तीन कब कहे. अथाचार्य सुतस्तेषाम बुद्धि में एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद यथा. अथ तदुपरांत आचार्य सुतः शुक्राचार्य के पुत्र तेषां उन असुर पुत्रों की बुद्धि एकांत संस्थितां केवल एक ही विषय भक्ति में स्थिर आलक्ष्य देखकर भीतः भयभीत होकर त्वरितः तुरंत राज्ञे राजा हिरण्यकश्यपु से आवेदयत कह सुनाया यथा उचित ढंग से. अनुवाद. जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। अतएव ये असुर राज के पास गए और उनकी और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। तात्पर्य, बुद्धि में एकांत संस्थिता शब्द सूचित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। तथ्य यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है और भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे विशेषतः देखा, अतएव वे डर गए क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। कोप आवेश अत्यंत क्रुद्ध मुद्रा में चलत कांपता हुआ गात्र पूरा शरीर पुत्रम अपने पुत्र को हंतुम मारने के लिए मनह मन को दधे स्थिर किया। क्षिप्त्वा डांटते हुए परुषया अत्यंत कटु वाचा वाणी से प्रहलादम प्रहलाद महाराज को अतत अरहणम अपने उत्तम चरित्र तथा सुकोमल आयु के कारण प्रतारणा के अयोग्य आह कहा इक्षमाण क्रोध में उसे देखते हुए पापे न अपने पाप कर्मों के कारण तिरश्चीने न टेढ़ी चक्षुषा आंखों से प्रश्रय अवनतम अत्यंत विनम्रता से दांतम संयमित बद्ध अंजलि हाथ जोड़े अवस्थितम स्थित सर्प सांप पद आहत पांव से कुचला जाकर इव सदृश श्वसन फुफकारते प्रकृति प्रकृति से दारुण अत्यंत दुष्ट। अनुवाद, जब हिरण्यकश्यपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका शरीर कांपने लगा कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकश्यपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत विनम्र तथा भद्र था, वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकश्यपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रतारणा के योग्य न था, फिर भी हिरण्यकश्यपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु वचनों के द्वारा फटकारा। तात्पर्य, जब कोई परम अधिकारी भक्त के प्रति धृष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल जाता रहता। उदाहरणार्थ, हिरण्यकश्यपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्ग लोक समेत समस्त लगभग ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता था, किंतु अब प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल छीण हो गए, जैसा कि श्रीमद्भागवत 10:4:46 में कहा गया है, आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकान आशिष एव च हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमः। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। हो गया ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
जय। छठवें और सातवें अध्याय में प्रहलाद महाराज जी के उपदेश का वर्णन है, तो उसका क्या प्रभाव हुआ इसके विषय में नारद जी कहते हैं। अथ दैत सुता सर्वे, उस विद्यालय में जितने भी असुर बालक थे वे बड़े ही ध्यान से प्रहलाद महाराज के उपदेश को सुने और सुन करके बड़े आदर के साथ श्रद्धा से उसको स्वीकार किए, और जो गुरु पढ़ाते थे सन्न और अमर्क उसको नैव नहीं ही कितना भी ये लोग डांटे फटकारे, सुनो ध्यान से लिखो, लेकिन वे लोग हरे कृष्ण जपते थे, भगवान का नाम लेते थे, भक्ति करते थे, उनकी बात को नहीं ही माने। और सर्वे सभी लड़के तो गुरु ने बड़े ध्यान से देखा, सभी लड़के बिगड़ गए, सब लड़कन प्रहलाद बिगाड़ा। एक कहावत है, लोग कहते हैं गांव में, कोई किसी के संग से बन जाता है बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं सब लड़कन प्रहलाद बिगाड़ा, सभी लड़कों को प्रहलाद बिगाड़ दिया। तो ध्यान से देखे सब लड़कों को, सब तिलक किए थे और भगवान का नाम जप रहे थे, और सबने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। असुर बालक थे लेकिन प्रहलाद जी के उपदेश का ऐसा असर हुआ कि वे लोग भगवान के भक्त हो गए। तो आचार्य ध्यान से सबको देखे और डांटते थे कि पढ़ो तुम हम जो कहते हैं, लेकिन नहीं वा ना ये वा नहीं ही सीखे। ये लोग बेंच को बजा बजा करके और हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगे। अब गुरु जी देखे और रोज छड़ी तान रहे थे, अगर भक्ति करोगे तो पीटेंगे, तो सभी लोग हरी बोल करते थे। गुरु जी देखे कि इनकी मति एक संस्थिता, एकस्मिन कृष्णे, एक भगवती भगवान में, कृष्ण में लगी हुई है। तो सभी लड़कों की ये दशा देख करके गुरु जी बहुत भयभीत हो गए कि अरे बाप रे बाप, इस बात को जानेगा राजा तो हमको दंड देगा। इसीलिए भीत वो भयभीत होकर के और जितना जल्दी हो सके त्वरित तुरंत क्लास से निकल करके, विद्यालय से निकल करके गया और राज्ञे आवेदन, राजा के लिए आवेदन किया, बताया कि ये हालत सभी लड़कों की है। यही गुरु जी ही कहे थे हिरण्य कशिपु को कि आप चिंता मत कीजिए, समय बीतने दीजिए और हमारे पिताजी आएंगे, नीति सिखाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो हिरण्य कशिपु नहीं चाहता था लेकिन कह दिया ठीक है, तो कहाँ इसका सुधार होगा। तो वो लोग कहे कि अब विद्यालय में और विद्यालय में जा करके वो और बच्चों को नष्ट कर दिया। तो ये गुरु सोचा कि हिरण्यकश्यपु को ये पता लगेगा अपने आप है, तो वो बहुत क्रोधित होगा। अभी तो प्रहलाद की भक्ति देख करके हमको मारने के लिए तैयार था, अब सभी लड़कों की दुर्दशा सुनेगा तो बहुत क्रोध करेगा। इसलिए वो स्वयं ही राजा के पास जा करके ये सारे वृत्त को सुना दिया। राज्ञे आवेदयत, राजा को निवेदित कर दिया, सुना दिया कि सरकार, वो प्रहलाद गया विद्यालय, उन सभी लड़कों को कृष्ण भक्त बना दिया। इसको सुनते ही को क्रोध से कांपने लगा, कोपावेश चलत गात्रा, और सोचा, संकल्प किया कि अब अपने पुत्र को, प्रहलाद को अपने हाथ से मारूंगा। पहले दूसरे लोगों से मरवाना चाहता था, बहुत से राक्षस थे उनको कहता था कि मारो, लेकिन अब पुत्रम हन्तुम मनोदधे, मन में ठान लिया, मनोदधे मन बना लिया कि अब प्रहलाद को मारना है स्वयं अपने हाथ से। और ऐसा विचार होने से पहले वो प्रहलाद महाराज कुछ छिपतवा, छिपतवा का अर्थ है गाली देकर के बोलने लगा, आक्षेप किया, परुषया वाचा, कठोर वाणी से, प्रहलादम अत दर्हणम, यद्यपि प्रहलाद महाराज इसके योग्य नहीं थे, वो बहुत सुशील थे और उम्र बहुत कम थी, इतने छोटे बच्चे को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए, लेकिन इसका विचार हिरण्यकश्यपु नहीं किया। अत दर्हणम, दुर्वचन के योग्य नहीं थे प्रहलाद महाराज, लेकिन फिर भी यह दुष्ट प्रहलाद महाराज को कटुक्ति से तिरस्कार करने लगा और बोलने लगा, आह इक्षमाणा, वो प्रहलाद पर देख रहा था, तिरश्चिने न चक्षुषा पापे न, अपने पापी दृष्टि से देखने लगा, बहुत हिंसा की प्रवृत्ति से, तिरछा से देख रहा था। जब तो बड़ा शरीर था उसका, तो प्रहलाद छोटे थे तो उनको देख रहा था ऐसे तिरछा, आंख क्रूर थी, इसीलिए नारद जी पापेन चक्षुषा कह रहे हैं, पापी आंख से। अरे दर्शन करता वैष्णव समझ करके तो कुछ कल्याण भी होता, लेकिन बुरी नजर से देख रहा है, पापी नेत्र से। और आह बोला, श्री प्रहलाद महाराज कैसे हैं, तो प्रश्रय औनतम, विनय से नम्र हैं, बद्धांजलि, हाथ जोड़े हुए खड़े थे। इसका अर्थ है कि गुरु जी प्रहलाद को पकड़े पकड़े लाए थे विद्यालय से, तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके अवस्थित थे, नम्र थे। कहने का आशा है कि वो कुछ गाली देता था हिरण्यकश्यपु, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल दुर्वचन नहीं बोलते थे, उसका जवाब नहीं देते थे, विनीत भाव से खड़े थे। और उनके इस अवस्था को देखकर, इस स्थिति को देखकर वह और सांस लेने लगा, फुफकारने लगा, जैसे सांप को कोई पैर से मार दे तो सांप फुफकारने लगता है, डसना चाहता है। इस तरह से वह दुष्ट बहुत अधिक क्रोध से फुफकारने लगा। श्वसन का अर्थ है सांस लेता हुआ। सांप सांस को क्रोध से छोड़ता है तो फ की आवाज आती है, उसको फुफकार कहते हैं। वैसे वह स्वभाव से ही, प्रकृति से ही दारुण था, बहुत भयंकर था वह असुर। स्वभाव से ही दारुण था, तो क्या प्रहलाद महाराज ने ऐसा किया कि वो सांप जैसा फुफकारने लगा? कुछ भी नहीं, प्रहलाद महाराज जैसे थे वैसे ही नम्र खड़े थे, पर यही दुष्ट का स्वभाव है। उपदेश ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते। चाणक पंडित कहते हैं कि मूर्खों को उपदेश किया जाता है तो वो शांत नहीं होते हैं, बल्कि और प्रकुपित होते हैं। जैसे पय पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को कोई प्रेम से दूध पिलावे तो सांप का विष ही बढ़ेगा। और सांप कोई सुंदर स्वभाव का हो करके दूध पिलाने वाले को चूमेगा नहीं। बल्कि विष पीने से उसका, दूध पीने से विष बढ़ेगा और डसेगा उसको भी जो दूध पिलाया है। तो ऐसा स्वभाव था, प्रकृति दारुण, नारद जी कह रहे हैं। स्वभाव से ही भयंकर था वो, दुष्ट था। तो उसकी भाषा आप सुनिए। हिरण्यकश्यपु उवाच, हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे दुर्विनीत, अरे उदंड, तुम में विनय नहीं है, तुम झुकना नहीं सीखे हो। जबकि प्रहलाद महाराज प्रश्रय से अवनत हैं, हाथ जोड़े हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु कह रहा, अरे दुर्विनीत, अरे उदंड, दुष्ट, मंदात्मन, मंद आत्मा जिसकी है, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, इसलिए मंद कह रहा है कि मैं सोचा था कि मेरे चार पुत्र हैं, तो जैसे और सबको मैं राज्य दूंगा तो तुमको भी सबसे श्रेष्ठ राजा बनाऊंगा। मैं तीनों लोगों को जीत लिया हूं, इंद्र आदि देवता मेरे बस में हैं, इतना बड़ा राज्य मैं सोचा था तुमको दूंगा, लेकिन तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल मंद है, तुम कुछ भी सोचते नहीं, इतना मंद भाग्य है तुम्हारा और बुद्धि इतनी डल है कि बाप के हाथ से ही मारे जाओगे। ये तुम्हारा भाग्य खराब है, तुम्हें सोचने की कोई बुद्धि नहीं है। अरे दुष्ट, मेरी बात मानोगे तो तुम विश्व का राजा बनोगे और मेरी अवहेलना करके मेरे ही हाथ से मरना चाहते हो। कुल भेद कर तुम अपने खानदान का रास्ता बदल दिया। तुम्हारे कुल में जो भी हुए वे सब देवताओं से द्रोह करने वाले हुए, विष्णु को शत्रु समझने वाले, और तुम विष्णु के भक्त हो गए। तो तुमने अपने कुल का रास्ता बदल दिया। इसका अर्थ करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि तू दूसरा कुल चला दिया, कुल भेद कर। बहुत से कुल हैं बड़े बड़े ऋषियों के, ब्राह्मणों के, जो बड़े बड़े प्रजापति हैं, लेकिन प्रह्लाद महाराज ने सबसे श्रेष्ठ कुल चलाया, जो कुल भेदकर का ही अर्थ है। अधम, अरे अधम, अरे नीच, अरे अस्तब्ध, तुम पिता के सामने या गुरुजनों के सामने झुकते नहीं हो। मेरे शासन की अवहेलना किए हो, मेरी बात नहीं माने हो। आज मैं तुमको जमराज के घर भेज दूंगा। निषेत्वाद जमक क्षयम, जमक क्षय, क्षय मैंने निवास। जमराज जहां रहते हैं नरक में, वहां तुमको भेज दूंगा। अर्थात तुमको आज ही मारूंगा। आज ही मारूंगा, और वास्तव में आज ही हिरण्यकश्यपु मरेगा। भगवान ने कहा था ना कि जिस दिन ये प्रह्लाद को मारना चाहेगा मैं उसको मार दूंगा, भले कितना भी ब्रह्मा ने वर दिया है। तो हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि मैं तुमको आज मारूंगा, और ये निश्चित हो गया कि उसके मरने की का दिन यही था। क्रुधस्य जस्य कंपन्ते त्वयो लोकासहेश्वरा। अरे नादान, जब मैं क्रोध करता हूं तो केवल मेरी क्रोध की मुद्रा को देख करके तीनों जगत के जीव ईश्वरों के साथ, अपने अपने मालिक के साथ थर थर कांपने लगते हैं। तीनों लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधरलोक, जितने भी जीव हैं सब कांपने लगते हैं कि पता नहीं मालिक क्यों क्रोध में हो गए, पता नहीं किसका भाग्य खराब है। ये सोच करके सब लोग कांपने लगते हैं। तीनों लोग के जीव मतलब ऊपर देवता लोग भी कांपते हैं, और ऐसा हिरण्यकश्यपु मैं पूरा क्रोध में हूं, और फिर भी तुम निडर हो, तुमको डर नहीं लगता है। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम्हारे पास किसी का बल है। अरे मूर्ख, बोलो तुम किसके बल से निर्भय हो। तस्मे अभितवन मूढ़ शासनम किम बलोतेगा। तुम किसके बल से मेरे शासन की अवहेलना किए हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हारा बल कहां से आ रहा है? तो श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन, हे राजन, मेरा बल ही नहीं, भवतश्च आपके पास जो बल है, जिस बल से आप देवताओं को जीत लिए हैं, जिस बल से तीनों जगत के आप शासक बने हुए हैं, वह बल भी, मतलब आप में जो बल है वह भी, और अन्येषाम अन्य लोगों में जो बल है, वो सब बल वहीं से आता है। न केवलम में भवतश्च राजन, सवई बलम बलिनाम चापरेशम, आपका बल, मेरा बल और अपरेशम अन्य लोगों का बल भी वहीं से आता है, उन्हीं से आता है। परे वरे मी स्थिर जंग माए, पर या अवर जो भी जीव हैं, पर मतलब देवता आदि और अवर का अर्थ है छोटे छोटे जीव, कमजोर जीव, किसी भी जीव में जो भी बल है वो भगवान से ही आता है। ब्रह्मा देव जन वशम प्रणीता, ब्रह्मा जिसे लेकर के शुरू करके, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर सभी, परे अवरे अमी, श्रेष्ठ जीव हो या निकृष्ट जीव, सब में जो भी बल है सब भगवान विष्णु से ही आता है, ब्रह्मा आदि सब उनके वश में है। अरे तो साफ नाम बताओ कौन, तो नाम रखना है, उनका नाम है उरुक्रम, जिनका क्रम बहुत है, देखिए जिनकी लीलाएं बहुत हैं, उर्व क्रमा जस्य, तीन पग में ही जो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए हैं, वे हैं त्रिविक्रम, उरुक्रम, वे भगवान विष्णु ही काल है, सब वस्तुओं का नियमन वही करते हैं। कल्याति इति काल, कल्याति का अर्थ है सबको गिनना, सबको कंट्रोल में रखना, इसको काल कहते हैं, काल के अधीन यह सारा जगत है। तो वे भगवान विष्णु ही काल है, वही ईश्वर है। उरुक्रम है, ओजा, सब में जो भी इंद्रिय बल है वो बल उन्हीं से आता है, और सह और मनोबल, किसी में जो भी मनोबल है उन्हें से आता है, और बल शरीर बल, शरीर में जो बल है उन्हें से आया हुआ है, वही वास्तव में तीनों जगत के जीव हैं। ये तीनों जगत में जो भी सृष्टि है वही है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। सैव विश्वम परम सुशक्त भी, वे परम जगत के रूप में भी हैं और जगत से परे भी हैं। स्वशक्ति भी अपनी शक्तियों के द्वारा वही विश्वम सृजति अवति अति, विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। गुणत्रय ऐसा तीन गुणों के सत्व रज तम के वही ईश्वर हैं, कंट्रोलर है। और तीन शक्तियों के द्वारा वे विश्व की सृष्टि करते हैं, अवति पालन करते हैं और अति संहार करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु कहता है, मेरा शत्रु मुझको बल क्यों देगा? तुम पागल हो गए हो, ठीक नहीं बोल रहे। इस पर प्रह्लाद महाराज ने कहा, पिताजी ये आसुर भाव छोड़िए, भगवान को शत्रु मत कहिए। जह्यासुरम भावम, इस आसुर भाव को छोड़िए, अपने हृदय का जो भाव है भगवान को आप शत्रु समझ रहे हैं, ये आसुर भाव है, ये असुर का विचार है। जही इसको समाप्त कीजिए, छोड़िए। जह्यासुरम भावम इमं त्वमात्मना, समम मनोधत्, आप मन को सम कीजिए, मन में समता लाइए। न संति विद्वेष, कोई किसी का शत्रु नहीं है। असली शत्रु है, शत्रु अज्ञान से उत्पन्न हो जाता है। रीते अजित अजितात आत्मना, अजितात आत्मना, जब कोई व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं किया रहता है, अजितात्मा होता है, तो उसी व्यक्ति के बहुत से शत्रु होते हैं। तो शत्रु वास्तव में स्वमोह प्रभवा, अपने अज्ञान से उत्पन्न होता है। अर्थात यह शत्रु है, यह मित्र है, इस प्रकार की भावना केवल अज्ञान से होती है। अपने अज्ञान के अलावा कोई शत्रु नहीं है। न संति विद्वेष, स्वमोह प्रभवा, अपने अज्ञान से जन्म हुआ जिनका, ऐसे शत्रु भाव के अतिरिक्त कोई किसी का शत्रु नहीं। पिताजी जब आप अपने मन को समता में ला देंगे, सबको समान दृष्टि से देखेंगे, किसी को शत्रु या मित्र नहीं मानेंगे, तब भी अनंत से महत् समर्हणम, यही भगवान अनंत की महान पूजा है। सबके प्रति समभाव, यही भगवान की महत समर्हणम है, महति पूजा है। दस्युन पुरा क्षण न विजित लुम्पटो मन्यंत एके स्वजिता दिशा दशा। एके का अर्थ है कुछ लोग, आप जैसे कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मैंने दसों दिशाओं को जीत लिया और अपने भीतर अपने शरीर में रहने वाले शत्रु को भी नहीं जीत पाते हैं, और मान लेते हैं कि मैं दुनिया में सबको जीत लिया। मन्यंत दस्युन पुरा सुन न विजित, छह शत्रु जो शरीर के भीतर रहते हैं उसको तो नहीं जीते, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या ये सब शत्रु हैं, तो जो भीतर शत्रु रहते हैं इनको नहीं जीत पाते हैं, और मान लेते हैं कि मैंने बाहर के दसों दिशाओं में शत्रुओं को जीत लिया। ये भीतर के शत्रु वास्तविक डाकू हैं, दस्युन। इन छह शत्रुओं को नहीं जीत पाते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या ये छह शत्रु हैं, इनको नहीं जीत पाते हैं, जबकि ये लुम्पत प्रत्येक जीव के विवेक धन को लूटते हैं, ये बहुत हानि करते हैं, काम क्रोध लोभ ये सब बहुत हानि करते हैं, इसीलिए इनको प्रहलाद महाराज दस्यु कह रहे हैं। और ये दस्यु अपने शरीर में ही रहते हैं और हमारा धन लूटते हैं, क्या धन, विवेक धन, ज्ञान खत्म कर देते हैं, तो इनको तो लोग नहीं मार पाते हैं और बाहरी शत्रुओं को जीता हुआ मान लेते हैं कि मैं ईस्ट में चढ़ाई किया, वेस्ट में किया, दक्षिण किया, उत्तर किया, इस कोने में उस कोने में दस दिशाओं में मैंने दिग्विजय किया, सबको जीत लिया, परंतु अपने मन में रहने वाले छह शत्रुओं को नहीं जीते। तो एके शब्द द्वारा कह रहे हैं कि एक प्रकार के जिसमें आप भी हैं, पिताजी आप भीतर के शत्रुओं को नहीं जीते हैं और झूठ मूठ मान रहे हैं कि मैं दसों दिशाओं को जीत लिया। जो जीतात्मा है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया ज्ञस्य, और इस प्रकार जो ज्ञानी है तस्य, उस व्यक्ति साधो जिसने साधना किया है, साधना करके अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए कोई शत्रु नहीं है, अज्ञान के अलावा। तो प्रकारांतर से हिरण्यकश्यपु यह समझा कि ये स्वयं जितेंद्रिय बन रहा है और हमको इंद्रियों के वश में कह रहा है, तो और क्रोध हो गया उसको। व्यक्तम तुम मर्त कामोसी, अब स्पष्ट हो गया कि तुम मरना चाहते हो, मर्तुम इच्छसी, अब तुम मरना चाहते हो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुमको थोड़ा भी तमीज नहीं, साफ हो गया कि अब मरना चाहते हो। व्यक्तम तुम मर्तु कामोस, व्यक्तम का अर्थ है क्लियर हो गया कि अब तुम मरना चाहते हो। योति मात्रम विकत से, अब तुम आवश्यकता से ज्यादा बोलने लगे, वो अपने पोजीशन से तुम फालतू जा रहे हो। तुम मुझको इंद्रिय का गुलाम बता रहे हो और अपने को जितेंद्रिय कह रहे हो, तो अति मात्र, अति मात्र मतलब सीमा लांघ गए हो। तुमको थोड़ा भी ध्यान नहीं कि बाप के सामने कैसे बोलना चाहिए, तो इससे मैं समझ गया कि अब मरना चाहते हो। मर्तु कामुस, मर्तुम कामुस, तुम्हारी कामना हो गई है मरने की। मुमूर्षु नाम है मंदात्मा ननु शिव विप्लवा गिरह, क्या पहचान है कि तुम अब मरना चाहते हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मुमूर्षु होता है, मरण की स्थिति में होता है, मरने वाला होता है, तो उसको उसकी बातें उठपटांग निकलने लगती है। विप्लवा गिरह, इसी तरह की बच्चों, इसी तरह की वाणी उसकी निकलने लगती है, जिसका कोई अन्वय नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। अरे मंद भाग्य, जस त्वया मंद भाग्युक्त मदन्यो जगदीश्वर, तुम यह कहते हो मेरे अलावा यदि कोई दूसरा ईश्वर है जिसका नाम विष्णु है तो कहाँ है, कहाँ है वो। प्रह्लाद जी ने कहा तुरंत, वो सब जगह है, सर्वत्र आस्ते, वो सब जगह है। तो ये बातें हो रही थी बहुत बड़े हाल में, एक सभा भवन था, बहुत बड़ा हाल जिसमें हजारों असुर लोग बैठते थे। तो श्री प्रह्लाद महाराज ने कहा वे सब जगह है, जो सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं है, जिस खंभे में हिरण्यकश्यप प्रह्लाद महाराज को बांधा था, सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं है। स्तंभे कस्मान दृश्यते, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जब सब जगह है तो यहां क्यों नहीं है। श्री प्रह्लाद ने कहा दृश्यते, भगवान दिख रहे हैं, वो प्रणाम करने लगे प्रह्लाद महाराज, भगवते नमः, भगवान को प्रणाम है, तो देख करके प्रणाम कर रहे थे, वो देख रहे थे खंभे में, स्तंभ में, और हिरण्यकश्यप नहीं देख रहा था, क्योंकि भक्ति किए बिना भगवान का दर्शन नहीं होता है। श्री प्रह्लाद महाराज कह रहे थे मया तो दृश्यते, हमको तो दिखाई पड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता था न दृश्यते, नहीं है खंभा में, फिर ध्यान से देखने लगा खंभे पर और सिंहासन से उठ गया। सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन से खड़ा होकर कहा कि मुझको नहीं दिखाई दे रहा है, अगर तुमको दिखाई दे रहा है तो अभी मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर रहा हूं, काट रहा हूं, और तुमने उसकी शरण लिया है तो तुमको बचा ले तो देखूंगा। इतना कह करके तलवार हाथ में लिया और खड़ा हो गया। प्रहलाद महाराज की गर्दन काटना चाहता था, अब चैलेंज हो गया, यदि तुम्हारा ईश्वर है तो आज बचा ले। खड़ा होकर के तलवार लेकर के हाथ में तलवार लिए थे, परंतु अपने बाएं हाथ से उसने मुष्टिका बनाई और उस खंभे पर जोर से मारा। उसका देह वज्र के समान था तो खंभे पर मारा और सोचा कि इसको दिखाई दे रहा है विष्णु, हो सकता है इसमें हो तो उसको मारूं, उसको घाव लगेगा वो मर जाएगा। बहुत जोर से मारा, उसी समय बहुत भीषण ध्वनि हुई उसी खंभे में से, बहुत जोर की, ऐसी ऐसा भयंकर आवाज वो पहले कभी नहीं सुना था, भयंकर आवाज। वो देखने लगा कहां से आवाज आ रही है, पर ध्यान से सुनने पर भी वो ये नहीं समझ पाया कि आवाज कहां से आ रही है, केवल आवाज फैल रही थी। उस आवाज को सुनकर हिरण्यकश्यपु कांप गया, इतनी भयंकर आवाज थी और पूरे ब्रह्मांड में उसकी प्रतिध्वनि हो रही थी। यहां तक कि सत्यलोक में श्री ब्रह्मा जी अपने आसन से गिर गए, धड़ाम से कुर्सी पर से। आवाज ऐसी भयानक थी कि ब्रह्मा जी इतना सावधान रहते हैं लेकिन फिर भी वे गिर गए। उनको पता नहीं था कि ये भगवान की आवाज है, यह अकस्मात ध्वनि हुई तो ब्रह्मा जी गिर गए। और गिर करके चले उस ध्वनि को लक्ष्य करके कि ये आवाज जहां से आ रही थी, ये नहीं समझ पाए कि आवाज किसकी है, कौन ऐसा बोला। सिंह की दहाड़ थी, और जितने भी असुर लोग थे वे सब गिर गए। हिरण्यकश्यपु बहुत सावधान होकर के देखने लगा कि कहां से आवाज आई, लेकिन वो कुछ भी निश्चित नहीं कर पाया कि इस ध्वनि का आश्रय कौन है, कहां से आवाज आई, कौन बोल रहा है, वो नहीं समझ पाया। तो देखने लगा पूरी सभा में, पूरे हाल में देखने कहां से आवाज आई, लेकिन उस ध्वनि के पद को आश्रय को नहीं पा पाया। बड़ी सावधानी से देख रहा था कहां से आवाज आई, तब तक उसी खंभे को फाड़ कर भगवान प्रकट हुए, लेकिन अद्भुत, ऐसा जीव वो कभी कहीं भी सुना था और न देखा था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा जीव कहीं नहीं है। उसका नीचे का शरीर मनुष्य जैसा था, नर जैसा, और आधा शरीर सिंह जैसा, तो देखने लगा ध्यान से ये कौन जीव है, ये न नर है न सिंह है, ये कैसे रचना हो गई, कौन किया। तो तुरंत ही वो समझ गया कि ये हो सकता है विष्णु का ट्रिक हो। तो तुरंत ही भीषण गदा लेकर के वो भांजने लगा, बहुत वेगशाली गदा उसकी सी, क्योंकि यह विष्णु है लगता है, बहुत मायावी है ना, बहुत प्रकार का कपट करता है विष्णु, इसको मार करके रहूंगा। तो भगवान पर प्रहार करने की सोच रहा था, अब मैं इसके देह पर मारूंगा, गदा मारूंगा, लेकिन श्री भगवान उसको दोनों बाहों से पकड़ लिए। सिंह का अगला पैर बाही होता है, जो उसको पकड़ लिया जोर से, लेकिन हिरण्यकश्यपु भी एक वीर था, वो भगवान के हाथ से उत्कलित, सुखदेव गोस्वामी कहते, छटक गया। वास्तव में भगवान ने ही बंधन ढीला कर दिया और वो निकल गया भगवान के बाहों से। पर वह मूर्खता बस ये सोच रहा था कि मुझसे ये डर रहा है, मेरे पराकर्म से डर रहा है। भगवान ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको छोड़ दिया, तो वो समझता था कि मैं जोर लगाया, इसके हाथ में दर्द हो गया, इसलिए हमको छोड़ दिया। ये जो भी जीव समझता होगा, ये तो मिश्र है, नर और सिंह का मिश्रण है, ये मुझसे डर रहा है। तो अब बहुत सावधान हो गया कि इसकी पकड़ में हम न आवें। उसकी पकड़ बड़ी कठिन थी, सिंह पकड़ा था ना, तो किसी तरह से छटपटा करके निकल गया। तो अब सोचता था कि ऐसा पैंतरा करूंगा कि मुझको पकड़ नहीं पाएगा, तो तुरंत हाथ में तलवार लिया और ढाल लिया, खड़ग और चर्म, ढाल दे लिया और तलवार, और लगा बहुत फुर्ती से भांजने कि नृसिंह पकड़ न पाए। लेकिन भगवान के पास बहुत उपाय है, भगवान ने ऐसा अट्टहास किया, वे हंसे जोर से, अट्टहास करने से हिरण्यकश्यपु की आंख बंद हो गई, निमिलिताक्ष आंख बंद हो गई, और भगवान ने पकड़ लिया, यही अंतिम पकड़ थी। फिर छटपटाने लगा, विश्वक स्फुरंतम, चारों तरफ छटपटा रहा था, भगवान के हाथ से निकल जाना चाहता था, लेकिन कुछ भी किया भगवान छोड़े नहीं। जैसे एक सांप चूहे को पकड़ लेता है तो चूहा के छटपटाने से वो छोड़ता नहीं है। सुखदेव जी यही उदाहरण दे रहे हैं। वो छटपटा रहा था लेकिन भगवान छोड़े नहीं, और तुरंत उसको उस सभा भवन के देहली पर ले गए, दरवाजे के मध्य। वह घर के भीतर था न बाहर था, दरवाजे पर देहली पर ले गए और उसके आधे शरीर को जमीन पर लटका दिया और शेष अंग को अपनी गोद में रख लिए। श्री भगवान वहीं पर घसीट करके आसन ले गए थे, हिरण्यकश्यपु का आसन, सिंहासन, और वहीं पर वे बैठे। हिरण्यकश्यपु का आधा शरीर जमीन पर था और आधा ऊपर था। उसने कहा था कि हमारी मृत्यु, ब्रह्मा जी से मांगा था कि आकाश में न हो और जमीन पर भी न, घर के भीतर भी मैं न मरूं, बाहर भी नहीं, न रात में न दिन में। वो समय शाम का था जब सूर्य आधा डूबा हुआ था, उस समय भगवान ले गए वहां देहली पर। जो छटपटा रहा था उसको तुरंत चीर दिए, ददारा फाड़ दिए, अपने अंगुली के नख से, नख इतना मजबूत था कि उसको उन्होंने, भगवान ने दोनों हाथ के नख को उसके छाती में धसाया, धसा करके और फाड़ दिया अनायास ही। लीलाया कई बार बात कही गई है, खेल खेल में भगवान ने फाड़ दिया हिरण्यकश्यपु को। जब भगवान फाड़े उसके छाती को और उसके पेट से आंत भी निकाल लिए, आंत निकाले, और कोई भगवान के पास आ नहीं रहा था, तो भगवान ने सोचा कि मुझे कोई माला नहीं पहना रहा है, कोई स्वागत नहीं कर रहा, तो स्वयं ही माला पहन लिए आंत की, और खून निकला उसके छाती से जो भगवान का केसर जो कंठ के अंदर, कंठ में रहता है केस सिंह के, उसको केसर कहते हैं, और उस केसर से युक्त होता है, इसीलिए उसको केसरी कहते हैं। और सिंह के गर्दन पर ऊपर सटा बाल रहता है, उसको सटा कहते हैं। तो नीचे केसर खून की बूंदों से रक्त रंजित हो गया है, खून सब जगह लग गया, और भगवान के देह में, पीताम्बर में सब जगह खून, और तुरंत फाड़ करके और भगवान ने उसको नीचे फेंक दिया। असुर लोग देख रहे थे जो इसके अनुचर थे हिरण्यकश्यपु के, हमारा स्वामी मारा गया, ये राजा मारा गया, तो वे सब क्रुद्ध हो गए और नृसिंह भगवान पर आयुध लेकर के आक्रमण करने की सोचे। सब लोग तैयारी कर रहे थे कि अब मारेंगे इसको, तो भगवान हिरण्यकश्यपु को फेंक करके और सिंह आए ही, वे उछल उछल करके समस्त असुरों को मारने लगे। उनके नख ही बड़े बड़े आयुध थे। और इसके साथ ही भगवान ने सुदर्शन चक्र भी ले लिया असुरों को मारने के लिए, और वज्र भी इंद्र का ले लिए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निज आयुध और इतर आयुध, दूसरे के आयुध और अपने आयुध को भी दिए। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए तो बस नख ही आयुध था, अब दूसरे असुरों को मारने के लिए और भी आयुध ले लिए। और जो जहां मिलता था भगवान जा करके खाने लगे, असुरों को मारने लगे, खाने लगे। खाने का अर्थ है काटना या जैसे वृंदावन में कहते हैं कोई बानर किसी को काट लेता है तो कहते हैं बानर खा गया उसको, खाना कहते हैं। तो यही शब्द भी प्रयुक्त होता है भगवान के लिए, वे असुरों को खाने लगे। छलांग मार मार करके पकड़ते थे और खा जाते थे। तो कोई भक्त सोचेगा कि अरे भगवान मांस खा रहे हैं असुर का, खून पी रहे हैं। अरे भगवान नहीं है, वो सिंह है, सिंह मारेगा खाएगा ना मांस या खून पिएगा। जो आंत की माला लगाया है तो क्या असुरों के मांस को नहीं खाएगा? सिंह है तो भगवान इस तरह से मार रहे थे असुरों को, हजारों असुरों को मारे। उस हाल में से निकल करके बाहर होकर के और बहुत से असुरों को मारे, सब हाय हाय करके भागे भागे के। ये तो भयानक सिंह है, लेकिन कहीं भी कोई भाग नहीं सका। भगवान बहुत तेज छलांग मारते थे, सिंह बहुत तेज दौड़ता है और छलांग भी बहुत लंबा मारता है। भगवान पकड़ पकड़ कर असुरों को जहां तहां मार दिए। और इसके बाद आए हिरण्यकश्यपु के उस सिंहासन पर अधिकार करके बैठे, जैसे कोई राजा किसी दूसरे राजा को हराता है तो उसके आसन पर वही बैठता है। तो यह राजनीति दिखा रहे थे भगवान कि मैं अपने शत्रु को मार दिया तो इसका सारा सामान मेरा है। दूसरा अर्थ है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं कि भगवान हिरण्यकश्यपु के आसन को, जो अपवित्र था, हिरण्यकश्यपु का भोगा हुआ आसन, उस पर बैठ गए। जबकि ब्राह्मणों का दिया हुआ आसन और यज्ञ में दिया हुआ आसन, वैदिक मंत्रों से जो पवित्र किया गया है, उस पर भी भगवान नहीं बैठते। और एक असुर के आसन पर जो उसका उच्छिष्ट है, उसके द्वारा उपभुक्त है, उस आसन पर भगवान बैठे और बिना दिए हुए हिरण्यकश्यपु को मार करके उस आसन पर बैठे। तो भगवान यह दिखा रहे हैं कि मेरा भक्त यदि असुर भाव से युक्त हो जाए फिर भी उससे मैं प्रेम करता हूं। हिरण्यकश्यपु के आसन पर बड़े गर्व से भगवान बैठे। और उस समय भगवान की आंखें क्रोध से तप्त स्वर्ण के समान लग रहे थे, पीली पीली आंखें दमक रही थी। क्रोध क्यों था भगवान को कि भगवान अपने भक्त प्रहलाद के प्रति किए गए अपराध के कारण असुरों पर क्रुद्ध थे, तो अति भयानक रूप था भगवान का। असुरों को मारते समय भगवान का मुख पहाड़ की गुफा के समान खुला था, नाक और मुख ये दोनों पहाड़ की गुफा के समान थे, आंखें ऐसी धधक रही थी कि लगता था कि दवानल जल रहा है। भगवान के आंख को मुख को देख पाना भी असंभव हो गया किसी के लिए। जब भगवान जहां तहां असुरों को मार रहे थे और क्रोध में दहाड़ रहे थे, दुर्वार गुरुवा रवम गुरगुरा रहे थे सिंह की तरह, तो देवता लोग जो आकाश से देख रहे थे भगवान को, वे भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे। यहां तक कि ब्रह्मा जी, भगवान शिव और देवराज इंद्र भी, ये सब लोग डर गए, सभी देवता डर गए कि पता नहीं अब भगवान क्या करेंगे। उस समय वर्णन है तो भगवान के सांस से समुद्र में उफान आ गया, भगवान कूद रहे थे, उछल रहे थे तो सांस ले रहे थे, सांस छोड़ने से समुद्र श्वास हटा, समुद्र में पानी इधर से उधर होने लगा, श्वास हटा उनके श्वास से और उनके आंखों के तेज से सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश फीका हो गया, पैरों की धमक से पृथ्वी डोलने लगी और शैला समुत्पेतु पर्वत ऊपर उठने लगे। समुत्पेतु का अर्थ है कि जैसे गेंद पड़काने पर ऊपर जाता है, वैसे भगवान जब पैर से मारते थे पृथ्वी पर तो पर्वत गेंदे की तरह उछल जाते थे ऊपर। भगवान को इस तरह से असुरों के प्रति आवेश हो गया था उन्हें मारने का, तो मार रहे थे, खा रहे थे जहां तहां। तो भगवान के इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं थी कि भगवान के पास आ जाए। भगवान शिव भी डर गए, देवराज इंद्र भी डर गए और देवता सब। जब कभी भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आते हैं, भगवान को माला पहनाने के लिए, लेकिन यह ऐसा अवतार हुआ कि भगवान के सब भक्त दूर चले गए डर करके, कोई भगवान के पास नहीं आ रहा था। उनके विकराल रूप को और उनकी क्रिया को, असुरों को खाने की क्रिया, मारने की देखते थे तो भगवान के रूप और कर्म से भय हो गया है। ब्रह्मा जी को भी भय हो गया कि पता नहीं किस मूड में है, इस समय क्या करेंगे, इतना उछल रहे थे दूर दूर तक पकड़ करके मार रहे थे, खा रहे थे, तो भय हो गया कि कहीं हमारे तरफ भी आ करके मार देंगे एक हाथ भी तो हम तो खत्म हो जाएं। इसलिए दूर से सब लोग देख रहे थे बहुत दूर। केवल एक दल था, वो था देवियों का दल, देवताओं की जो पत्नियां हैं, जैसे माता पार्वती, सरस्वती, सची, प्रधान प्रधान देवताओं की स्त्रियां, देवलोक की देवियां स्त्रियां आकाश से भगवान पर पुष्प बरसाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और मधुर स्वर से गीत गाती थी, नमस्ते नरसिंहाय, इस तरह से। तो स्त्रियों की आवाज आ रही थी भगवान के कान में, भगवान सुनने लगे और धीरे धीरे शांत होने लगे। नंदन वन के पुष्पों की सुगंध भगवान को मिली, वो फूल बरसा रही थी तो उस फूल में बहुत सुगंध थी, तो सुगंध से भगवान का कोप धीरे धीरे शांत होने लगा। पूरा शांत नहीं हो रहा, भगवान अभी भी क्रोध में थे। तब देवताओं ने देखा, विमान पर चढ़े चढ़े देवता लोग देखे कि भगवान थोड़ा शांत हो रहे हैं, तब वे हिम्मत जुटाए, अपना अपना नगाड़ा और दुंदुभी लेकर के बजाना चालू किए। जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, आकाश में देवता लोग देखे कि हमारी स्त्रियों का गीत भगवान स्वीकार कर रहे हैं और फूल की वर्षा को स्वीकार कर रहे हैं, तब उन्हें भी नगाड़ा बजाने का साहस हुआ और दुंद भी बजाने का। तब ब्रह्मा जी ने इशारा किया, सभी देवता लोग आए, ऋषि लोग आए, कहे वे आ गए भगवान के निकट, अभी दूर ही थे, बहुत निकट नहीं, जहां भगवान उनको देख सकते थे, उनकी दृष्टि जहां तक जाती थी उसके दृष्टि के अंदर आ गए देवता लोग, अलग अलग दल, सिद्ध, किन्नर, गंधर्व, नाग, चारण आदि देवता, भिन्न भिन्न जातियां हैं देवताओं की, वे सब आए और नाति दूर चरे पृथक, अति दूर नहीं थे, अभी भी दूर थे लेकिन अति दूर नहीं, थोड़ा निकट आए और भगवान उनको देखते थे दल बना करके। तो वे कहते थे, सरकार हम गंधर्व हैं, हम किन्नर हैं, अलग अलग बोलते थे। सबसे पहले भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया, नमोस्मि अनंताय दुरंत शक्ते, हे प्रभु आपकी दुरंत शक्ति है, शक्ति का कोई अंत नहीं है और आप अनंत हैं, सभी देश में और सभी काल में आप हैं, आपके कर्म बड़े पवित्र हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि भयानक कर्म है, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म वास्तव में परम पवित्र हैं। इन कर्मों को गाने और सुनने से ही जीव को मोक्ष मिलता है, इस तरह ब्रह्मा जी ने कहा। और भगवान शिव तो भगवान के साथ विनोद करने वाले हैं, सेवक स्वामी सखा सीएपी के, भगवान के दास भी हैं शिव जी, सखा भी हैं, और स्वामी भी हैं। तो भगवान शिव ने कहा एक ज्ञान नाटक किए, अरे आप तो क्रोध छोड़िए, शांत होइए। तो भगवान ने कहा कि क्या करूं, ये असुर हो गया था। तो भगवान शिव ने कहा कि यह असुर कितना अल्पक, कितना छोटा है, इसके लिए इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है, और क्रोध किए अब तो काम हो गया ना, और तो मर गया ना असुर, अब उसके बच्चे की रक्षा कीजिए, मतलब प्रहलाद की रक्षा कीजिए, आप शांत होइए, अब भक्तों को अवसर दीजिए आपको पानी पिलाने का या मिठाई खिलाने का, माला पहनाने का, यही हाथ की माला धारण किए रहेंगे। तो भगवान शिव सखा के मूड में बोल रहे हैं कि अब आप अपना शांत स्वरूप दिखाइए, भक्तों को सेवा का अवसर दीजिए। फिर भी भगवान शांत नहीं हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा, बेटा तुम्हारे कारण भगवान इतना अशांत अर्थात क्रोध में है, तो तुम भगवान से कहो, शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं हो रही थी निकट आने की, तो प्रहलाद महाराज को कहे तुम शांत करो। जब श्री प्रहलाद महाराज गए भगवान के पास, साष्टांग प्रणाम किए चरणों में, तो केवल प्रणाम करने से ही भगवान का क्रोध पूर्णतः समाप्त हो गया, शांत हो गया। जबकि इसके पहले ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा कि माता जी आप जाइए, भगवान क्रोध में है, अब तक न पानी पिए न कुछ भी, क्रोध में है, इनको शांत कीजिए। लक्ष्मी जी बड़े गर्व से चली, कह रही हाँ हाँ मैं इनको शांत कर दूंगी। और जब निकट गई और दांत देखा वो भयानक, और पहाड़ के गुफा जैसा मुख सब विकराल, नासिका दांत और आंत की माला, तो लक्ष्मी जी घूंघट तान करके पीछे हटने लगे, इस समय इनका मूड ठीक नहीं है, अरे बाप रे कहीं एक थप्पड़ चला दिए तो। इतना विकट रूप था भगवान का कि लक्ष्मी जी डर गए, लेकिन प्रहलाद महाराज थोड़ा भी डरे नहीं। सिंह का बच्चा क्या डरेगा सिंह से, उनको कोई भय नहीं था। जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम करते ही भगवान उनको गोद में उठा लिए, और जैसे सिंह बच्चा को चाटता है अपने बच्चा को, उसी तरह से भगवान चाटने लगे प्रहलाद महाराज। इसके बाद श्री प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति किए, 42 श्लोक में वह है, बड़ी लंबी स्तुति है। ब्रह्मा जी भी स्तुति किए हैं एक एक श्लोक में, सभी देवता बारी बारी से अलग अलग स्तुति किए। तो स्तुति की व्याख्या कल से करूंगा। जय श्री नृसिंहदेव, जय श्री प्रभुपाद। नृसिंह वंदना गाइए।